मैं समझता हूँ लेखक की भूमिका समाज में नहीं, मतलब आज के समाज में नहीं, कल के समाज में होती है, क्योंकि लेखक समाज का अनुगामी नहीं है। वह समाज में जो कुछ घटित होता है उस सब का ही लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं करता। समाज को लेकर, उसकी परिस्थितियों को लेकर उसे जो असंतोष होता है उसको व्यक्त करता है, और बहुत बार इस तरह से वह आने वाले कल का अग्रगामी होता है।
ये है आवाज, अंधेरे बंद कमरे, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन जैसी कालजयी रचनाओं के लेखक मोहन राकेश की, जिन्हें कमलेश्वर और राजेंद्र यादव के साथ नई कहानी का त्रिकोण कहा जाता था। उनके सबसे करीबी दोस्त कमलेश्वर ने उनके बारे में लिखा था, मेरे दोस्त राकेश ने एक अव्यवस्थित जिंदगी जी थी, लेकिन उस अव्यवस्थित जिंदगी के अंदर भी एक गजब का अनुशासन छिपा था, एक रचनात्मक आत्मा के दिमाग का अनुशासन। ये जरूर है कि स्वभाव से मोहन राकेश बहुत फक्कर थे। जब वो अपनी पहली शादी के लिए इलाहाबाद पहुंचे थे तो उनके साथ कोई बारात नहीं थी। लगभग यही उन्होंने दूसरी शादी के वक्त भी किया, न किसी को खबर की और न ही किसी को बुलाया। दोनों ही शादियां नहीं चली। फिर उनकी मुलाकात अनीता औलक से हुई। दिलचस्प बात यह थी कि अनीता की मां चंद्रा मोहन राकेश की मुरीद थी। अनीता बताती हैं,
मेरी मां को बहुत पसंद थे राकेश जी, वो उनको खत लिखा करती थी, लेकिन एक ओम प्रकाश जी थे जिन्होंने राकेश जी को कहा था कि नहीं, ये चंद्रा जी नहीं, ये चंद्रा जी उनकी मां लिख रही हैं उनकी बेटी के नाम से। राकेश जी को पहले से ही पता था, क्योंकि ओम जी ने बताया था कि ये अनीता राकेश तो मैं चिट्ठी नहीं लिख रही, उसकी माँ लिख रही है उसके नाम से। सारिका से जब उन्होंने त्यागपत्र दिया तो मेरी माँ ने कहा, आपका दूसरा डाइवोर्स हो गया है, आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आप हमारे पास आइए और रहिए। तब हम ग्वालियर में रहते थे, वो ग्वालियर में आए, मैं उनसे उससे पहले भी मिल चुकी थी, ये तीसरी बार मिली थी। पहली बार मिली थी जब उनके दूसरी शादी हुई थी, उसके बाद मैं उनको वेंगल्स में मिली दो बार, तीसरी बार मिली ग्वालियर में, तब तक मैं बड़ी हो गई थी। मैं 5 साल की थी जब मैंने राकेश जी का नाम सुना था। मुझे ये नहीं पता था कि ये आदमी एक दिन मेरे सामने खड़ा होगा और मुझसे कहेगा कि मेरे साथ भाग चलो। मैं भाग गई।
उस जमाने में औलक परिवार ग्वालियर में रहा करता था। मोहन राकेश मुंबई से दिल्ली जाते हुए बीच में ग्वालियर में रुके। शाम को सब लोग दिल एक मंदिर फिल्म देखने गए। मोहन राकेश और अनीता अगल बगल बैठे फिल्म देख रहे थे, तभी उनका रुमाल जमीन पर जा गिरा था।
वो रुमाल नीचे गिर गया था फिल्म हॉल में, तो वो रुमाल उठाने के लिए मेरे हाथ उनके पैरों के साथ लग गए। हम बोले तो कुछ भी नहीं, ये भी नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। जानते वो भी थे मन में और मैं भी, लेकिन हम दोनों कभी एक दूसरे को कुछ नहीं बोले।
हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं।
मैंने उनसे पूछा कि आप दोनों में से इश्क का इजहार सबसे पहले किसने किया?
प्यार का इजहार उन्होंने कभी नहीं किया। मैंने उनको एक बार कहा था कि तुम मुझसे इसलिए नहीं कह रहे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि तुम समझते हो कि कह देने से आदमी छोटा हो जाता है। मैंने उनको कहा, नहीं, छोटा नहीं हो जाता। अपना इजहार करने के लिए उन्होंने लहरों के राजहंस के पहले सफ़े पर लिखा, उस एक को जिसे लगता है कि मन की बात कहने से आदमी छोटा हो जाता है। इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वो मुझे प्यार करते हैं।
जब अनीता ने मोहन राकेश से शादी करने की मंशा अपनी माँ से बताई तो उन्होंने उन्हें बुरी तरह से पीटा।
मेरी माँ ने तो मुझे दौरी से पीटा, कहने लगी वो तेरे से प्यार करते हैं, अरे वो तेरे के ऊपर तो थूकता भी नहीं है। फिर जब उन्होंने मम्मी से बात करी तो राकेश जी ने उस दिन साफ साफ बात कर दी कि देखिए मैं अनीता से प्यार करता हूँ। मम्मी ने मेरे ऊपर पैरा रखना शुरू कर दिया, मुझे बाहर आना जाना मना हो गया। राकेश जी ने कहा था एक दिन तुम आ जाना संडे को सुबह ट्यूटोरियल्स का, कह के एक वही कपड़े लाना जो तुमने पहने होंगे और एक अपने कुछ सर्टिफिकेट्स और कुछ नहीं। वो दिन था, माँ ने कहा बारिश होने वाली है, मत जाओ आज। मैंने कहा माँ आज ही तो जाना चाहिए, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं भीगना चाहती थी जैसे मल्लिका भीग गई थी, वो भी आषाढ़ का एक दिन था। मैं उन्हीं कपड़ों में सर्टिफिकेट लेके चली गई, फिर लौट के नहीं आई।
इस बीच अनीता का परिवार भी दिल्ली आ गया। अनीता ने चावड़ी बाजार के एक प्राइवेट कॉलेज में बीए में दाखिला लिया। राकेश रोज सुबह 6:45 पर टैक्सी से अनीता से मिलने उनके कॉलेज पहुंचते। राकेश उनसे शादी कर उन्हें बंबई ले जाना चाहते थे। तब शायद अनीता के बालिग होने में कुछ दिनों की देर थी। सवाल था कि कानून और परिवार की साजिशों से कैसे बचा जाए। राकेश के सबसे करीबी दोस्त कमलेश्वर अपनी आत्मकथा आधारशिलाएं में लिखते हैं।
राकेश चाहता तो सब कुछ था, पर वो घबराता बहुत था। आखिर ओम प्रकाश ने एक तरकीब निकाली, अनीता राकेश के साथ खुलेआम सफ़र कर सके इसके लिए उसने अखबारों में एक विज्ञापन दिया। एक प्रख्यात लेखक के लिए ज़रूरत है एक ऐसी महिला सेक्रेटरी की जो युवती हो, हिंदी और अंग्रेज़ी की अच्छी ज्ञाता हो, जो डिक्टेशन ले सके और भारत से बाहर लेखक के साथ सफ़र कर सके। पोस्ट बॉक्स नंबर इतने पर आवेदन आमंत्रित हैं। इस विज्ञापन को राकेश ने पर्स में रख लिया। अब सारी तैयारियां पूरी थीं। 8-10 दिन बाद अनीता को राकेश के साथ दिल्ली छोड़ देना था।
अनीता के मन में कहीं ये बात थी कि राकेश 2 शादियां कर चुके थे, उनके साथ उनकी निभ भी पाएगी या नहीं। मोहन राकेश ने अनीता का मन मजबूत करने की जिम्मेदारी मशहूर उपन्यासकार मन्नू भंडारी पर सौंपी। मन्नू भंडारी ने बीबीसी को बताया,
उनका कहना था कि मैं इस ढंग से बात कहूं कि अनीता स्वीकृति दे दे। अब मैं जब वहां गई तो मैं तो दंग, वो तो बहुत ही बच्ची सी, वो बहुत छोटी लड़की थी वो तो। अनीता तो मुझे पकड़ के एकदम, बताइए मनोज जी, 2 पत्नियां छोड़ी, क्या कारण था, क्यों छोड़ी? मैंने कहा कोई कारण नहीं था। कभी भी तुमने राकेश जी के मुंह से पहली पत्नी की कभी कोई बुराई सुनी? दूसरी कद से तो साथ ही बहुत कम रहा, तो वो कभी किसी की बुराई नहीं करते थे। सिर्फ इन लोगों के व्यक्तित्व बहुत अलग थे जो साथ नहीं निभा। और भाई यही कारण था, व्यक्तित्व अलग थे। वो था वो लड़के तो बच्चों की तरह से एकदम, और तो कोई कारण नहीं था, कोई बड़ा कारण तो नहीं था। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, तो मैं कर लूँ शादी तो कोई वो तो नहीं होगा। मैंने कहा देखो शादी का मामला ऐसा होता है, ये तो अपनी अपनी इच्छा की बात होती है, तुम कर लो बहुत अच्छा है, नहीं करो तो जो भी करो तुम तुम्हारी इच्छा पे निर्भर करेगा।
जिस दिन इन दोनों को मुंबई जाना था उस दिन बारिश हो रही थी। माँ ने उन्हें घर से बाहर निकलने से मना किया, लेकिन अनीता अपनी किताबें और सारे सर्टिफिकेट्स लेकर एयरपोर्ट जाने के लिए निकली। आगे की कहानी कमलेश्वर की जुबानी।
तय ये हुआ कि अनीता को हौज काजी से मैं लाऊंगा, राकेश मुझे गोल ढक खाने पर इंतजार करता मिलेगा। अनीता पूड़ी वाली दुकान में अपनी किताबें पकड़े इंतजार कर रही थी, सलवार कमीज और चप्पलें पहने जैसे वो कॉलेज जा रही हों। गोलडाक खाने पर दूसरी टैक्सी में बैठा राकेश हमारा इंतजार कर रहा था। उसके पर्स में वो विज्ञापन वाला कागज मौजूद था और जेब में एयर टिकट। अनीता शांत थी जबकि राकेश पसीना पसीना था और बार बार सिगरेट सुलगा रहा था। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो राकेश ने कहा अभी फ्लाइट में समय है, रेस्तरा में बैठना ठीक रहेगा। मुझे तब और भी मज़ा आया जब अनीता भी हंसी, जब हमने देखा कि राकेश हम दोनों से अलग होकर आगे आगे चल दिए जैसे हमें पहचानते ही ना हो। मुझे भी हंसी आई जब अनीता ने कहा यही आपका जिगरी दोस्त है जिसका जिगर इतना कमजोर है।
इस तरह अनीता का वैवाहिक जीवन शुरू हुआ। उनकी उम्र 21 साल की भी नहीं थी। बंबई उतरते ही मोहन राकेश अनीता को सन एंड सैंड होटल ले गए।
मैं बहुत डर रही थी, मैंने पर्दा खींचा बाहर देखने के लिए। मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठी थी, उल्टियों पे उल्टी मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। मैं जा के दरवाज़ा खोलूं तो वो कॉकपिट का खुलता था, मुझे दिखता था बाहर, पता नहीं कैसे जा रहा, मुझे पता नहीं हवाई जहाज कैसा होता है। जब हम होटल में गए तो मुझे इतना अजीब लग रहा था कि ये लोग कहेंगे ये पता नहीं कौन आई है इसके साथ, बाल उड़े हुए, मुझे लग रहा था ये लोग सोचेंगे पता नहीं कौन से खैर लेके आए हैं कहाँ से। जब हम ऊपर पहुंचे तो मैंने पर्दा खोल कर नीचे सन एंड सैंड में देखने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो यहाँ पर्दा खोलने पे कैद कर लेते हैं, पर्दा बंद कर दो। जब पहली बार मैंने इनके साथ अकेले कमरे में मैं गई थी तो उन्होंने चिटकने लगा दी, मुझे बड़ा डर लगा अब क्या होगा। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा देखो मुझे घर छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझसे कहने लगे तुम्हारा दिल करता है यहाँ से जाने का, सच बोलो। मैंने कहा नहीं, बम्बई तो वो मुझे लेके गए लेकिन वहाँ हमें कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी, हम ना अकेले मिल सकते थे, ना बात कर सकते थे, ना ही कोई हमारा रिश्ता बन सका। मुझे बात तक नहीं करते, मुझे छुआ तक नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ, शायद मैंने बहुत गलत फैसला लिया है। हमारा सेक्सुअल रिलेशन बहुत देर के बाद हुआ क्योंकि वो आदमी जो है वो अपने दोस्तों से घेरा रहता था।
किसी भी कमसिन लड़की के लिए मोहन राकेश जैसे जटिल शख्स के साथ सामंजस्य बैठाना आसान काम नहीं था। मोहन ने भी उनसे साफ साफ कहा था कि उनकी प्राथमिकताओं में वो तीसरे नंबर पर ही आती हैं।
वो कहते थे कि देखो अनीता, वैसे वो मुझे बहुत नाम से बुलाते थे, अन्तिन मिन, तिन्ना है मेरा असली नाम, तिन्नी है। बोलने लगे देखो तिन, मैं आज तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूँ, पहले नंबर पे तो मेरा लेखन है, दूसरे नंबर पे मेरे दोस्त हैं, तीसरे नंबर पे तुम हो, और वैसे भी देखिए ये तीन का जो हिस्सा है ना ये मैं सारी उम्र पीछा करता रहा। 3 अगस्त के मैं, 3 दिसंबर को वो गुजरे, 3 बच्चे उनके थे, 3 बच्चे मेरे। मैंने कहा ठीक है मैं तीसरे नंबर पे ही ठीक हूँ।
मोहन राकेश के सबसे नज़दीकी दोस्त थे कमलेश्वर। कई साल पहले वो BBC स्टूडियो आए थे और उन्होंने मुझसे अपने जिगरी दोस्त के बारे में बहुत सी बातें की थी।
हम लोग साथ साथ रहते थे 9 वर्ष, हम और मोहन राकेश एक ही घर में ऊपर नीचे, क्योंकि हम लोग दिन भर मस्ती में बातें करना, गप्पे लड़ाना, नई कहानी की बातें सोचना होता ये था कि हर वक्त जब भी कोई आए हम लोग कॉफी हाउस में बैठे होते थे। तो एक रोज किसी ने पूछा कि राकेश भाई आप का क्या दिनचर्या क्या रहती है, तो उन्होंने कहा कि बड़ा आसान है, हम रात को पहुंचते हैं कोई 11:30-12 बजे घर, तो उसके बाद 1-2 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर उठते हैं 11-12 बजे दिन को, सुबह की चाय आए पीते हुए 12:30-1 हो जाता है, फिर कहने लगे कि फिर क्या, फिर बस जरा सा नाश्ता किया, शेव किया, नहाए धोए, तो इसी में 4:30-5 बज जाते हैं, कहने फिर कॉफी हाउस आ जाते हैं। तो कहने तो आप लिखते कब है, उनका लिखना लिखते हम कल है।
अनीता राकेश इस समय 75 साल की है और दिल्ली में रहती है। आजकल वो अपनी किताब अंतिम सत्रें लिख रही हैं। मोहन राकेश के साथ बिताए गए एक एक क्षण को वो बहुत शिद्दत से याद करती हैं।
देखिए उनको सिगरेट पीने की बहुत बड़ी आदत थी क्योंकि इनहेल वो नहीं करते थे, सिगरेट पीने की आदत उन्होंने मुझे भी डाली। रेखा, चमन, मदन, हम लोग सब छत पे बैठ के शराब और सिगरेट पिया करते थे। वो किसी की बदजुबानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, वो समझते थे कि वो सबसे ज़्यादा जानते हैं, किसी की बदजुबानी या किसी की बात वो नहीं सुनते थे। रेजिग्नेशन अपनी जेब में रख के घूमते थे कि किसी ने कोई बात की तो रिज़ाइन करके रख दूँगा। सारिका भी उन्होंने सिर्फ जैनियों की वजह से कही, उसकी वजह से 11 महीने कर दी तो छोड़ दी। शांति प्रसाद जी ने पूछा भैया 11 महीने तुमने सारिका चलाई अब क्यों छोड़ दी, कहने लगे शांति प्रसाद जी एक एयर कंडीशनर खरीदना था मुझे, अब मैंने पैसा इतना तो बना लिया है कि मैं एयर कंडीशनर खरीद लूँ, अब मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। वो तो ये पन्ना लाल और इन लोगों को, इनकी फ्लूट वगैरह ये सब सुनते थे, पुराने LPs थे उनके पास, म्यूज़िक का तो उनको बहुत शौक था। और वैसे भी खयाम जैसे और ये सारे हमारे दोस्त थे, बम्बई जाते थे तो महफिलें होती थी, ये लोग घर में बैठ के गज़लें सुनते थे। वो कौन औरत थी जो बंजारन थी, रेशमा को सुना करते थे, वाह वाह किया करते थे।
अनीता के साथ रहते हुए मोहन राकेश को 6 साल हुए थे, तब उन्होंने उनसे कहा था अब तू मेरा घर छोड़कर जाएगी या नहीं, 2 साल से ज्यादा मैं किसी औरत के साथ नहीं रहा, पहले मैंने सोचा था कि 2-3 साल बाद तुम चली जाओगी, पर अब 6-7 साल हो रहे हैं और तुम्हारे जाने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, यार तूने मेरा रिकॉर्ड खराब कर दिया। अनीता ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, लेकिन 3 साल बाद राकेश उन्हें छोड़कर चले गए हमेशा के लिए। सिर्फ 46 साल की उम्र में सिर्फ 9 साल का साथ रहा इन दोनों का। रेहान फजल, BBC दिल्ली।